आहा ने एक लड़के से कॉल पर बात करके हटा था। वो लगभग 21 साल का था और उसका नाम मोंटी था। उसने मोंटी को चाहत पर नज़र रखने के लिए अपॉइंट किया था और साथ ही उसे इस बात का खास ख्याल रखना था कि चाहत को कहीं पर भी नौकरी ना मिले। मोंटी से चाहत के बारे में पूरी बात जानने के बाद आहान एक हाथ से पेपर वेट घुमा रहा था। उसकी आंखों के सामने चाहत का चेहरा घूम रहा था। आहान ने खोए हुए लहजे में कहा, सो सॉरी डॉल। जिस चीज़ पर आहान ओबेरॉय की नज़र पड़ जाती है वो सिर्फ उसकी ही होकर रहती है। जो चाहे समझ लो, पर अब से तुम पर मेरा कॉपीराइट है। तुम्हें खुद चलकर मेरे पास आना होगा। तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट किया, इसलिए तुम्हें मेरे पास रहने के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। ट्रस्ट मी, एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हें उस घटिया से घर में तो बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। खुद से बातें करते हुए आहान अचानक उठा और अपनी गाड़ी लेकर कहीं जाने को निकल गया। रास्ते में उसने मोंटी को कॉल कर लिया, जिसको उसने चाहत के पीछे लगाया था। आहान ने कॉल पर कहा, तुम उसी पब में रुको, मैं बस वहीं पर पहुंच रहा हूँ। चाहत घर चली गई क्या? हाँ, मैंने उन्हें यहीं से बस में जाते हुए देखा था, मोंटी ने जवाब दिया। आहान ने आगे कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। लगभग एक घंटे बाद वो उसी पब के आगे था जहां आखिर में चाहत नौकरी मांगने के लिए गई थी। मोंटी ने जब आहान को वहां देखा तो वो उसके पास चला गया। उसके पास आते ही आहान ने दबी आवाज में कहा, मुझे उस लड़के के बारे में जानना है जिसने चाहत के साथ बदतमीजी की थी। बोलते हुए आहान की आंखों में एक सनक साफ दिखाई दे रही थी। मोंटी ने उसकी बात पर हामी भरी। वो उसके लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, इसलिए उसे समझते देर नहीं लगी कि अब उस लड़के के साथ क्या होने वाला है। चाहत के साथ बदसलूकी करने की उसे अच्छी खासी सज़ा मिलने वाली है। मोंटी आगे आगे चल रहा था जबकि आहान उससे कुछ कदम पीछे आ रहा था। वो दोनों पब के अंदर घुसे तो काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा था और सब डांस करते हुए थिरक रहे थे। वो लड़का अब तक वहीं पर मौजूद डांस कर रहा था। ये बात अलग थी कि अब वो पहले से ज़्यादा नशे में था। वहाँ पहुँचते ही मोंटी ने उस लड़की की तरफ इशारा करके कहा। उसने जबरदस्ती चाहत मैडम को कमर से पकड़कर उसे अपनी करीब खींचा था। मोंटी की बात सुनकर गुस्से में आहान की मुट्ठियां बंद गई। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और धीमे कदमों से चलकर उसे लड़के की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो उस लड़के के पास पहुंचा, अचानक उस लड़के की जोरदार चीख निकली। म्यूजिक लाउड होने की वजह से आसपास के कुछ लोगों के अलावा किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी नशे में डांस करते हुए चीखना चिल्लाना वहां नॉर्मल था। लड़का जमीन पर गिरा हुआ था। किसी ने उसकी कमर पर चाकू घुसाकर बाहर निकाल दिया था। वार इतनी तेजी से और जल्दबाजी में हुआ था कि उसे पीछे देखने का मौका भी नहीं मिला और आहान उसे स्टैप करके आगे निकल चुका था। एक दो लोगों के पैरों में कुचलने के बाद लोगों का उस पर ध्यान गया और म्यूजिक बंद करवाकर सब उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी करने में लग गए। वहीं उसकी चोट पहुंचाने के बाद आहान पब से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा ही था कि उसके पास उसके भाई आयुष का कॉल आया। आयुष ने कॉल पर कहा, ब्रो आप कहाँ रह गए हो? मॉम डैड बस पहुंचने वाले हैं। मेरे पास किसी फालतू फैमिली गैदरिंग के लिए टाइम नहीं है आयुष। आगे से बिना मुझसे पूछे मुझे इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना। आहान काफी रूखे तरीके से जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वैसे भी वो उस लड़के की वजह से बहुत गुस्से में था। वहीं आहान के इस तरह बात करने पर आयुष हैरानी से अभी तक मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रहा था। तभी उसके पीछे से उसकी मॉम शिवानी की आवाज़ आई, जिसने उसके कंधे पर हाथ रख रखा था। शिवानी ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम आहान से बात करके हटे हो तो तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन लेकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही। जरूर तुमने उसे इस डिनर के लिए इन्वाइट किया होगा और उसने मना कर दिया होगा। शिवानी सब जानती थी। ये सुनकर आयुष ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर आप सब जानती हैं तो इस मामले में कुछ करती क्यों नहीं? जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे भाई को तुम्हें लाने के लिए एयरपोर्ट पर भेजा और साथ ही तुम्हारी वेलकम पार्टी में आने के लिए फोर्स किया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके और विजय के बीच काफ़ी डिस्टेंस से आ गई हैं। वजह क्या है दोनों ही नहीं बताते। दोनों ने ही यही कहा है कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए और मैं दूर रहती हूँ। तुम अभी आए हो, जल्द ही सब समझ जाओगे। अगर तुम्हें अपने भाई और डैड के बीच तालमेल बनाकर रखना है तो उन दोनों के बीच के टेंशन को भूल जाओ और अपने काम से मतलब रखो। शिवानी ने एक साथ ही आयुष को लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। उससे बात करने के बाद उसने उसे टेबल पर आने का इशारा किया। फिर शिवानी खुद भी उनकी बुक की हुई टेबल पर जाने लगी। विजय ओबेरॉय वहां पर पहले से बैठे हुए थे। आयुष ने टेबल की तरफ देखकर धीरे से कहा, आई डोंट नो आप इतना चिल कैसे रह सकती हैं, पर मैं नहीं रहने वाला। मैं ब्रो को अच्छे से जानता हूँ। वो किसी से बेवजह नाराज नहीं होते। जानता हूँ उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, पर गुस्सा बेवजह कभी नहीं होता। तो क्या डैड ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से भाई उनसे इतना नाराज है? आयुष अपने ख्यालों में खोया था। तभी उसकी मॉम ने उसे वापस आवाज लगाई। आयुष एक पल के लिए सब कुछ भूलकर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ पड़ गया। चाहत आज जॉब ढूंढने के लिए तीन जगह पर गई थी, पर तीनों की जगह उसे नाकामी हाथ लगी। वो ये बात अपनी नानी और माँ को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए चाहत ने अंदर जाने से पहले पास ही के स्टोर से चॉकलेट लेकर खाई। चॉकलेट खाने के बाद उसका मूड काफी हद तक ठीक हो जाता था। चॉकलेट खाने के बाद अंदर जाने से पहले चाहत ने खुद से कहा, कोई बात नहीं चाहत, देख लेंगे। जरूरी नहीं कि सारे दिन एक जैसे हों। आज मुझे जॉब नहीं मिली तो कल भी जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हो सकता है एक बेहतर जॉब मेरा वेट कर रही हो। इस वजह से ये छोटे मोटे काम मेरे हाथ नहीं लग रहे हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक चाहत। चाहत मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसकी मुस्कुराहट देखकर निशा और पार्वती दोनों की टेंशन खत्म हो गई थी। उसके आते ही पार्वती जी ने कहा, चाहत बेटा जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने तेरे पसंदीदा मटर पुलाव बनाए हैं। मटर पुलाव का नाम सुनकर चाहत ने चहकते हुए कहा, आई टोल्ड यू नानी, यू आर द बेस्ट नानी। उन दोनों की बातचीत सुनकर निशा ने हंसते हुए कहा, मक्खन लगाना बंद कर और जल्दी से चेंज कर ले, मैं तब तक वॉशरूम होकर आती हूँ। निशा वॉशरूम में गई। अचानक ही उन्हें तेज खांसी आई और वो दौड़ते हुए वॉश बेसिन के पास आ गई। खांसते हुए अपने हाथों की तरफ देखकर निशा के होश उड़ गए। उसके हाथ खून से सने थे जो उनके खांसने पर निकल रहा था। तभी चाहत ने बाहर से दरवाजा खटखटाया और कहा, मम्मा प्लीज जल्दी बाहर आइए, मुझे वॉशरूम यूज करना है। निशा कभी दरवाजे की तरफ देख रही थी तो कभी अपने खून सने हाथों को। अपने हाथों को देखकर उनकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया।